मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 28 मार्च 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथी मित्रों विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन एक नौजवान साथी का जिन्होंने एकेडमी की 10 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। इनका नाम है नितेश कुमार, आप भिलाई छत्तीसगढ़ से हैं। तो नितेश, आपका मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुख्य विषय के रूप में मैं आज आपसे जो अभी हमारे लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं उनको केंद्र में रखकर चुनाव की जो विश्वसनीयता होनी चाहिए और चुनाव की जो सेंटिटी होनी चाहिए, पवित्रता, उस पर कुछ बातें करूंगा। क्योंकि जैसा मैं पहले भी आपसे बता चुका हूं कि यह टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एवरग्रीन तरह का यह विषय है और आप जब अनसॉल्व पेपर उठाकर देखेंगे तो चुनाव सुधार पर आपको हमेशा कोई न कोई प्रश्न डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पूछा हुआ वहां मौजूद मिल जाएगा। मुख्य विषय के तहत हम इस पर बातें करेंगे, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। बहुत दिनों के बाद आपको रेडियो न्यूज में एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर सुनने को मिली होगी और वह है मिशन शक्ति। मिशन शक्ति, जिसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधित किया। ये बेसिकली इसको कहा जाता है ASET, अखबारों में आपको लिखा हुआ मिलेगा ASET। इसका मतलब है एंटी सैटेलाइट मिसाइल, एंटी सैटेलाइट मिसाइल। इसका मतलब यह हुआ, अगर सरल तरीके से हम समझें, कि जो अंतरिक्ष है वहां कुछ सैटेलाइट घूम रहे हैं। आपको मालूम है कि सैटेलाइट बकायदे छोड़े जाते हैं, उस सैटेलाइट को मार गिराने वाली मिसाइल, एंटी सैटेलाइट मिसाइल, एंटी विरोधी, उस सैटेलाइट का विरोध करने वाली मिसाइल, यानी कि एक ऐसी मिसाइल, एक ऐसा प्रक्षेपास्त्र जो उस सैटेलाइट को मारकर गिरा दे। लेकिन याद रखिए कि ये जो सैटेलाइट अभी जो परीक्षण किया गया है, ये बेसिकली वो जो सैटेलाइट था वो अब परिक्रमा तो कर रहा था लेकिन बेसिकली वह काम नहीं कर रहा था। वो सैटेलाइट बेकार हो चुका था, सेवा में नहीं था। मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि अच्छे खासे सैटेलाइट को मार करके गिरा दिया गया। ये भारत परीक्षण कर रहा था कि उसने यह क्षमता हासिल कर ली है या नहीं कर ली है, और 3 मिनट में ही उसने बिल्कुल एक लाइव सैटेलाइट को जो 300 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी से ऊपर परिक्रमा कर रहा था उसे मारकर गिरा दिया। और इस तरह से भारत भी अब आप यूं कह लीजिए कि अंतरिक्ष महाशक्तियों में शामिल हो गया है, क्योंकि इससे पहले 3 देश के पास ही यह क्षमता है, जिसमें एक है अमेरिका, रूस, ये 2 तो अक्सर होते ही हैं आपको मालूम है, तीसरा चीन भी है, और अब चौथा भारत इसमें शामिल हो गया है। देखिए, आपके सिविल सर्विस एग्जाम के मेंस में बकायदे आंतरिक और बाह्य सुरक्षा सिलेबस में है, राइट? आप इस्तेमाल कैसे करते हैं चीजों को? मुझे नहीं मालूम कि सीधे सीधे ASET पर कोई प्रश्न पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है कि विज्ञान के तहत इस पर एक छोटा सा प्रश्न पूछ भी लिया जाए, आपसे टिप्पणी करने को कह दिया जाए। लेकिन मान लीजिए कि अगर ऐसा नहीं कहा जाता है तो देखिए, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी हो या हमारे एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो, उसके लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है ASET, एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स का होना। क्योंकि अब इस मिसाइल्स के परीक्षण के बाद से हमारी जो आकाश है हमारी, उसकी सुरक्षा बिल्कुल इंश्योर हो गई है कि कोई भी संदिग्ध सैटेलाइट भारतीय अंतरिक्ष सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेगा। हम उसे बड़ी आराम से मार करके गिरा देंगे। और दूसरा है कि दुश्मन के भी जो सैटेलाइट हैं वो हमारी जासूसी नहीं कर सकेंगे। तो सोच करके देखिए कि हम आंतरिक और बाह्य दोनों ही सुरक्षा की दृष्टि से कितने अधिक इंश्योर हो गए होंगे। तो वहां आप इस तथ्य का प्रयोग कर सकते हैं। भारत ने बहुत साफ तौर पर यह इंश्योर किया है कि इसका प्रयोग किसी दूसरे देश के विरोध में नहीं किया जाना है, ये हमारी अपनी सुरक्षा के लिए है। मित्रों, आज इस सैटेलाइट पर मैं आपको कुछ एडिटोरियल कमेंट और एक आर्टिकल भी प्रोवाइड कर रहा हूं और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस पर एक छोटा सा नोट्स तैयार कर ले। अगर आप अभी सितंबर वाले एग्जाम में बैठने के बारे में उम्मीद लगा रहे हैं तो फ्रेंड्स, अब मैं दूसरी खबरों पर आता हूं जो खासकर ज्यादातर अखबारों पर केंद्रित हैं। देखिए, हमारे जो रघुराम राजन हैं साहब हैं, जो हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे हैं, अब भी आज उनका अखबारों में काफी बड़ा इंटरव्यू छपा है और उन्होंने ये मतलब अपनी सहमति सी व्यक्त की है कि अगर कांग्रेस या जो यूपीए गवर्नमेंट है उसकी सरकार बनती है तो हो सकता है कि उन्हें वित्त मंत्री का पद दिया जाए, और वो आने के लिए उन्होंने अपनी सहमति भी अप्रत्यक्ष रूप से दे दी है। स्पेशली इन्होंने जो एक सवाल उठाया है उस पर आप लोगों को विचार करना। उन्होंने कहा है कि जो हमारे रोजगार की अभी स्थिति है वो बहुत ही बेकार स्थिति है, रोजगार के जो आंकड़े हैं। तो अगर रोजगार के आंकड़े इतने पुअर हैं तो फिर देश 7% जीडीपी को कैसे हासिल कर सकता है? जो हमारी जीडीपी की जो गति है वो 7% नहीं हो सकता, क्योंकि नौकरियां ही नहीं निकल रही हैं। तो ये एक सवाल उन्होंने उठाया है, और मुझे लगता है कि सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के रूप में आपको इस पर विचार करना चाहिए। दोस्तों, बिजनेस स्टैंडर्ड में एक खबर छपी है विशेष आर्थिक क्षेत्रों को लेकर, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आपको मालूम है कि 2005 में एक अधिनियम के तहत सेज की स्थापना की गई थी, और इसका मेन जो पर्पस था कि कुछ ऐसे क्षेत्र बनाए जाएं, एयरपोर्ट या खासकर बंदरगाह वगैरह के निकट इस तरह के क्षेत्र बनाए जाएं जहां पर मैन्युफैक्चरर्स करने वालों को सारी सुविधाएं एक ही जगह पर उपलब्ध की जाएं, उनको सारी सुविधाएं मिल जाएं, उनको टैक्स की कुछ छूट भी दी जाए, और ताकि वहां से उत्पादित वस्तुओं का निर्यात किया जा सके। तो एक प्रकार से विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए किया गया था, जो हमारी सबसे बड़ी जरूरत भी है। देखिए, हम कृषि के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वहां संभावना भी नहीं दिखती है, राइट? सेवा के क्षेत्र में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो रोजगार की जो कमियां हैं उसकी पूर्ति तभी हो सकती है जब हम विनिर्माण के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे बढ़ें। और चीन की आज जो सबसे बड़ी ताकत है वो यही कि उसने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाया है। इसीलिए हमने सेज की परिकल्पना की थी, लेकिन चीन ने भी सेज की परिकल्पना की और चीन ने इसमें बहुत सफलता पाई। हमने भी चीन के पैटर्न को अपनाने की कोशिश की थी, लेकिन हम इसमें बुरी तरह से फेलियर रहे। हम क्यों फेलियर रहे, उसके कुछ कारण थे। पहला तो यह है कि स्टेट गवर्नमेंट को लिंक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने थे, उससे संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट वैसा नहीं कर सकी। सेज के लिए जो पूरी तरह से एक जो एटमॉस्फियर बनना चाहिए था वह एटमॉस्फियर भी नहीं बन सका। शुरू में तो इसके कानून थोड़े से सरल से बनाए गए थे, लेकिन बाद में इसके जो कानून थे वो बहुत जटिल होते चले गए। और फिर एक रीजन ये भी रहा दोस्तों कि जो भारतीय कंपनियां थी या दूसरी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी, उनको सेज में इसलिए लाया गया था कि वो विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करके निर्यात पर ध्यान देंगी, लेकिन वो निर्यात पर ध्यान न दे करके वो भारत में ही अपना बाजार ढूंढने लगी। तो यानी कि उनका ओरिएंटेशन बदल गया। तो इसका नतीजा यह हुआ कि सेज की जो अवधारणा थी हमारे यहां फेल हो गई। बाद में बाबा कल्याणी की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई गई थी और उसे कहा गया था कि वो इसके बारे में अपने सजेशन दे। उसने भी कुछ सजेशन दिए थे कि ढांचागत बदलाव किया जाए। दूसरा यह है कि निर्यात से संबंधित ही केवल चीजों पर जोर न दिया जाए, बल्कि उसमें कुछ और भी चीजें जोड़ी जाए। इस तरीके से करके उसने कुछ सजेशंस दिए थे, लेकिन उन सजेशंस पर अभी काम नहीं हो सका है। और इसका कुल मिलाकर परिणाम यह हुआ कि सेज की जो अवधारणा है वो भारत में लगभग असफल हो चुकी है। और ये क्यों असफल हुई है, इस पर आपको अच्छी तैयारी कर लेनी चाहिए। यह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, मैं थोड़ी सी बात करूंगा दल बदल पर। आप देख रहे हैं कि दल बदल कितनी तेजी के साथ हो रहा है। गोवा विधानसभा में जो दो मेंबर थे महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी के, टोटल तीन मेंबर थे, उनमें से दो ने पार्टी बदल करके और सीधे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। आपको मालूम है कि दल बदल विरोधी कानून आया था, और उसमें यह कि कोई भी किसी भी पार्टी के अगर एक तिहाई से अधिक सदस्य दल बदलते हैं तभी उनको मान्यता मिलेगी, अदरवाइज उनकी मान्यता खत्म हो जाएगी। तो तीन में से दो, ये तो 66% हो गए, तो उन बकायदे वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। और इसके अतिरिक्त भी आप रोज रेडियो न्यूज में भी सुन रहे होंगे, उतना रेडियो न्यूज में तो उतना नहीं है जितना ज्यादा आपको टीवी चैनल्स पर सुनने को देखने को मिलता होगा कि किस तरीके से राजनेता फटाफट पार्टियां बदल बदल करके दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। उसके कारण बहुत से हैं, किसी को टिकट नहीं मिला तो उसके विरोध में हो गए, किसी का और कोई कारण। तो यहां देखिए कि एक प्रश्न उठता है खासकर डेमोक्रेटिक सेटअप में कि क्या राजनीतिक दल ही इंपॉर्टेंट है या राजनीतिक विचार भी इंपॉर्टेंट है। क्या जो हमारे राजनेता हैं वो अपने कुछ राजनीतिक दर्शनों के साथ राजनीति में आए हैं या कि केवल एक मौका परस्ती के हिसाब से राजनीति में आए हैं कि जहां भी उन्हें सत्ता में आने का मौका मिले वैसे ही तुरंत उस दल में शामिल हो जाओ, तो यह एक विचार करने योग्य बिंदु है, इस पर भी आप सब विचार करेंगे। दोस्तों एक स्टेटमेंट है सब्सिडी को लेकर। आपको मालूम है कि जो दोहा वार्ता से लगातार भारत पर यह दबाव पड़ रहा है कि भारत अपने किसानों को बहुत ज्यादा सब्सिडी देता है और वो सब्सिडी देना कम करे, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिलहाल मैं उसे विस्तार से बताने में असमर्थ हूं क्योंकि समय नहीं है, लेकिन हमारे जो एक सचिव हैं वाणिज्य सचिव, उन्होंने कल बड़े अच्छे अंदाज में इसको स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि भारत तो अपने किसानों को हर साल 15,674 रुपए की सब्सिडी देता है। इस सब्सिडी में बिजली है, पानी है, खाद है, बीज है, न्यूनतम समर्थन मूल्य सब शामिल है। तो मोटे तौर पर कह लीजिए कि हम 15,500 रुपए की सब्सिडी किसान को देते हैं एक किसान को। और फिर उन्होंने आंकड़े से बताया कि जो चीन है, सोचिए 59,000 रुपीज देता है एक किसान को, और जो अमेरिका है वो तो 42 लाख रुपीज देता है सब्सिडी। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि फिर अमेरिका और चीन इन पर सवाल क्यों नहीं उठता है। उसका कारण यह है कि जब आप सब्सिडी वाले चैप्टर को पढ़ेंगे तो पता लगेगा आपको कि उस जो सब्सिडी दी जाती है उसको तीन बॉक्स में बांटा गया है, ग्रीन, ब्लू और अंबर। तो जो ग्रीन बॉक्स में सब्सिडी दिया जाता है उसको नुकसानदेह नहीं माना जाता, तो अमेरिका अपना ज्यादातर सब्सिडी ग्रीन बॉक्स के तहत देता है। क्योंकि मित्रों वक्त इतना नहीं है कि मैं इसको लेकर के बहुत विस्तार से आपसे बातचीत करूं, लेकिन जो सब्सिडी का मुद्दा है, दोहा वार्ता के बाद से लगातार विकासशील देश और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बीच एक जबरदस्त खींचतान का विषय बना हुआ है, इसलिए इस पर आपकी बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए। फ्रेंड्स आज का जो करंट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया गया है, कार्यस्थलों में महिलाओं की स्थिति का आकलन, प्लीज उसे आप जरूर बहुत अच्छे से पढ़िएगा, उसके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा क्योंकि वो महिला अधिकारों से संबंधित है और मी टू अभियान का संबंध चूंकि कार्यस्थलों पर महिलाओं के शोषण को से था, इसलिए उसमें आपको कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे और इस बार के मेंस के लिए यह आर्टिकल उपयोगी हो सकता है। फ्रेंड्स अब मैं आता हूं सीधे मुख्य विषय पर, चुनाव की विश्वसनीयता। इसमें केवल दो पॉइंट मैं आज आपसे चर्चा करने जा रहा हूं जो अखबारों में आज मेंशन किया हुआ है। पहला तो यह है कि खुद चुनाव आयोग ने बकायदे सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि जो चुनाव बॉन्ड योजना लागू की गई, इस पर हम लोगों ने दो तीन दिन पहले बात की थी, आपको मालूम होगा, उसको उन्होंने उसकी वैधानिकता पर सवाल उठाया है। और वैधानिकता पर यह कि अगर इस तरीके से बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों की फंडिंग की गई तो फिर राजनीतिक फंडिंग में जो पारदर्शिता होनी चाहिए, एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और जो एक जवाबदेही होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, वो नहीं रहेगी। क्योंकि आपको मालूम है कि बकायदे कहा गया है कि आप बॉन्ड खरीद लीजिए और बॉन्ड किसने खरीदे हैं यह बताना जरूरी नहीं है, तो पारदर्शिता खत्म हो गई। और बकायदे जो जनप्रतिनिधि कानून है उसकी जो धारा 29 है बी, एक उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो सरकारी कंपनियां हैं, पब्लिक सेक्टर की कंपनियां और विदेशी, वो राजनीतिक दलों को चंदा नहीं दे सकते। तो अब अगर उन्होंने बॉन्ड खरीद करके और सरकार को चंदा दे दिया, राजनीतिक दलों को चंदा दे दिया हो, तो अब कैसे पता लगेगा, क्योंकि उन्हें आप पूछ नहीं सकते हैं, तो पारदर्शिता का उल्लंघन हो गया, तो फिर जनप्रतिनिधित्व तो कानून के खिलाफ ही यह बात हो गई। पहला पॉइंट। जो दूसरा पॉइंट है तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यह है खासकर जो वीवीपैट से जो पर्चियां निकलती, ईवीएम मशीन के द्वारा अब वोटिंग होने लगी, आपको मालूम है मशीन के द्वारा, और उसमें बकायदे वीवीपैट से पर्चियां निकलती हैं। अभी जो राजनीतिक दल हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि 50% जो वोटिंग होती है, टोटल वोटिंग के 50% को वीवीपैट पर्चियों से मिलान किया जाए, यानी कि जिनको वोट दिया गया है और जो पर्चियां निकली हैं वो सेम है या नहीं है। और आपको मालूम है कि लगातार इन मशीनों पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है। सांख्यिकी तौर पर यह कह लीजिए कि लगभग सिद्ध भी हो चुका है आंकड़ों के आधार पर कि 5% जो मशीनें हैं उनमें गड़बड़ी आ सकती है। ये बात अलग है कि उस 5% मशीनों का कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं होगा। यह भी माना गया है कि विदेश में जो कुछ निजी कंपनियां हैं वो बकायदे डिजाइन करते समय कुछ ईवीएम ऐसे चीप बना सकती हैं जिनकी पारदर्शिता को लेकर के संदेह हो सकता है, और जो सबसे बड़ी बात है, देखिए कि अमेरिका और जर्मनी जैसे देश अब सीधे सीधे बैलेट पेपर पर आ गए हैं, क्योंकि उनके लिए डेमोक्रेसी सबसे इंपॉर्टेंट है। वो बैलेट पेपर से चुनाव कराने लगे, मशीन को उन्होंने छोड़ दिया है। तो भारत में भी लगातार इस पर सवाल उठ रहे हैं। जो चुनाव आयोग है उसका कहना है कि नहीं, हम केवल हर असेंबली के एक बूथ कोई ले लेंगे और उसमें जो मत गिरे हैं उनको वीवीपैट पर्चियों से मिलान कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप एक ही क्यों कर रहे हैं, आप ज्यादा में मिलान कीजिए ताकि जो वोटिंग हो रही है उसकी शुद्धता और उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, जो उसकी विश्वसनीयता है, वो बढ़े। अभी आयोग ने इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। विपक्षी दलों की मांग है कि 50% मतदान केंद्रों की पर्चियों का मिलान कराया जाए। हो सकता है कि 50% ज्यादा हो, लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका मानना है कि एटलीस्ट 20-30% बूथों का तो मिलान किया ही जा सकता है। भले ही दो दिन लेट हो जाए चुनाव परिणाम आने में, कोई बात नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, तो दो दिन की देरी कोई मायने नहीं रखती। और वैसे भी हमारे जो पहले इलेक्शन कमिश्नर मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं HY कुरैशी, जो आपने देखा होगा कि बहुत अच्छे आर्टिकल्स भी लिखते हैं, उन्होंने एक आइडिया दिया था। और आइडिया ये दिया था कि जैसे कहीं भी चुनाव हो रहे हैं तो उसमें एक प्रत्याशी जीतेगा और दूसरा सेकंड स्थान पर होगा, तो उन्होंने कहा कि जो सेकंड स्थान पर जो प्रत्याशी है उससे पूछा जाए कि बताइए कहां के बूथ की पर्चियों का मिलान किया जाए, और उनसे पूछने के बाद फिर वहां की पर्चियों का मिलान किया जाए। तो इसे उन्होंने कहा था जैसे क्रिकेट में थर्ड एम्पायर होता है, उस तरह से वो थर्ड एम्पायर जैसा काम करे, तो उनका भी एक अच्छा आइडिया ये रहा है। तो अब देखते हैं कि इस पर चुनाव आयोग क्या डिसीजन लेता है, लेकिन इसको लेकर के अभी जो बातचीत चल रही है, जो विवाद की स्थिति बनी हुई है, उसकी चर्चा मैंने आपसे की ताकि आपके दिमाग में इसको लेकर के स्पष्टता बनी रहे। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इनमें से तीन साथियों के नाम हैं, अनीता चौहान हिमाचल प्रदेश से, प्रियंका साव इच्छापुर वेस्ट बंगाल से, और अंकित कुमार सचान कानपुर उत्तर प्रदेश से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।